नमस्कार, मैं अजीत कुमार, बीए द्वितीय वर्ष का छात्र। मैं आपके लिए प्राचीन भारत का इतिहास तथा संस्कृति, यह पुस्तक जो कि डॉक्टर केसी श्रीवास्तव के द्वारा लिखित है, के अंतर्गत चक्रवर्ती गुप्त राजवंश, इस पाठ की रिकॉर्डिंग करने जा रहा हूँ। चक्रवर्ती गुप्त राजवंश, जिसका समय काल है 319 से 550 ईस्वी। कुषाण साम्राज्य के विघटन के पश्चात जिस विकेंद्रीकरण के युग का प्रारंभ हुआ, वह चतुर्थ शताब्दी ईस्वी के प्रारंभ तक चलता रहा। पश्चिमी पंजाब में यद्यपि कुषाण वंश का शासन था, तथापि पूर्व की ओर इसका कोई प्रभाव नहीं था। गुजरात तथा मालवा के पश्चिमी भाग में शक अभी सक्रिय थे, परंतु उनकी शक्ति का उत्तरोत्तर ह्रास होता जा रहा था। उत्तरी भारत के शेष भूभाग में इस समय अनेक राज्यों एवं गणराज्यों का शासन था। सामान्यतः यह काल अराजकता, अव्यवस्था एवं दुर्बलता का काल था। देश में कोई ऐसी शक्तिशाली केंद्र शक्ति नहीं थी जो विभिन्न छोटे बड़े राज्यों को विजित कर एक छत्र शासन व्यवस्था की स्थापना कर सकती। यह काल किसी महान सेनानायक की महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए सर्वाधिक सुनहला अवसर प्रस्तुत कर रहा था। फलस्वरूप मगध के गुप्त राजवंश में ऐसे महा सेनानायकों का उदय हुआ। गुप्त इतिहास के साधन। गुप्त राजवंश का इतिहास हमें साहित्यिक तथा पुरातत्वीय दोनों ही प्रमाणों से ज्ञात होता है। साहित्यिक साधनों में पुराण सर्वप्रथम है। पुराणों में विष्णु, वायु तथा ब्रह्मांड पुराणों को हम गुप्त इतिहास में पुनर्निर्माण में सहायक मान सकते हैं। इनसे गुप्त वंश के प्रारंभिक इतिहास का कुछ ज्ञान होता है। विशाख दत्त कृत देवी चंद्रगुप्तम नाटक से गुप्त वंशी नरेश, रामगुप्त एवं चंद्रगुप्त द्वितीय के विषय में कुछ सूचना मिलती है। अधिकांश विद्वान महाकवि कालिदास को गुप्तकालीन विभूति मानते हैं। उनकी अनेकानेक रचनाओं से गुप्त युगीन समाज एवं संस्कृति पर सुंदर प्रकाश पड़ता है। शूद्रक कृत मृच्छकटिक एवं वात्स्यायन के कामसूत्र से भी गुप्तकालीन शासन व्यवस्था एवं नगर जीवन के विषय में रोचक सामग्री मिल जाती है। भारतीय साहित्य के अतिरिक्त विदेशी यात्रियों का विवरण भी गुप्त इतिहास के पुनर्निर्माण में सहायक हुआ है। ऐसे यात्रियों में फाहियान का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। वह चीनी यात्री था। फाहियान गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय 375 से 415 ईस्वी में के शासन काल में भारत आया था। उसने मध्य प्रदेश की जनता का वर्णन किया है। सातवीं सदी के चीनी यात्री हुवेनसांग के विवरण से भी गुप्त इतिहास के विषय में कुछ सूचनाएं मिलती हैं। उसने कुमारगुप्त प्रथम, बुद्धगुप्त, बालादित्य आदि गुप्त शासकों का उल्लेख किया है। उसके विवरण से पता चलता है कि कुमारगुप्त ने ही नालंदा महाविहार की स्थापना करवाई थी। वह बालादित्य को हुण नरेश मिहिर कुल का विजेता बताता है। इसकी पहचान नरसिंहगुप्त बालादित्य से की जाती है। साहित्यिक साक्ष्यों के अतिरिक्त पुरातत्वी प्रमाणों से भी हमें गुप्त राजवंश के इतिहास के पुनर्निर्माण में पर्याप्त सहायता मिलती है। इनका वर्गीकरण तीन भागों में किया जा सकता है। पहला है अभिलेख, दूसरा सिक्के तथा तीसरा है स्मारक। अब हम इसको विस्तार से समझेंगे। पहला अभिलेख। गुप्तकालीन अभिलेखों में सर्वप्रथम उल्लेख समुद्रगुप्त के प्रयाग स्तंभ लेख का किया जा सकता है। यह एक प्रशस्ति है जिसमें समुद्रगुप्त के राज्याभिषेक, दिग्विजय तथा उसके व्यक्तित्व पर विशद प्रकाश पड़ता है। चंद्रगुप्त द्वितीय के उदयगिरी से प्राप्त गुहा लेख से उसकी दिग्विजय की सूचना प्राप्त होती है। कुमारगुप्त प्रथम के समय के लेख उत्तरी बंगाल से मिलते हैं, जो इस बात का सूचक है कि इस समय तक संपूर्ण बंगाल का भाग गुप्तों के अधिकार में आ गया था। स्कंदगुप्त के भीतरी स्तंभ लेख के हुण आक्रमण की सूचना मिलती है। इसी सम्राट के जूनागढ़ से प्राप्त अभिलेख से पता चलता है कि उसने इतिहास प्रसिद्ध सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण कराया था। इसके अलावा और भी अनेक अभिलेख एवं दान पत्र मिले हैं जिनसे गुप्त काल की अनेक महत्वपूर्ण बातों की जानकारी होती है। इन सभी अभिलेखों की भाषा विशुद्ध संस्कृत है तथा इनमें दी गई तिथियां गुप्त संवत की हैं। इतिहास के साथ ही साथ साहित्य की दृष्टि से भी गुप्त अभिलेखों का विशेष महत्व है। इनसे संस्कृत भाषा तथा साहित्य के पर्याप्त विकसित होने का प्रमाण मिलता है। हरिशेन द्वारा विरचित प्रयाग प्रशस्ति तो वस्तुतः एक चरित काव्य ही है। दूसरा है सिक्के। गुप्त वंशी राजाओं के अनेक सिक्के हमें प्राप्त होते हैं। ये स्वर्ण, रजत तथा तांबे के हैं। स्वर्ण सिक्कों को दिनार, रजत सिक्कों को रूपक या रूप्यक तथा ताम्र सिक्कों को मासक कहा जाता था। गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर राजस्थान प्रांत के बयाना से प्राप्त हुआ है। एलन, अल्टेकर आदि विद्वानों ने गुप्तकालीन सिक्कों का विस्तृत अध्ययन किया है। अनेक सिक्कों पर तिथियां भी उत्कीर्ण मिलती हैं जिनके आधार पर हम तत्संबंधी शासकों का तिथि निर्धारण कर सकते हैं। कुछ सिक्कों से कुछ विशिष्ट घटनाओं की सूचना मिलती है, जैसे एक प्रकार के स्वर्ण सिक्के के मुख भाग पर चंद्रगुप्त एवं कुमार देवी की आकृति तथा पृष्ठ भाग पर लिच्छवय उत्कीर्ण मिलता है। इससे स्पष्ट होता है कि चंद्रगुप्त ने लिच्छवी राजकन्या कुमार देवी से विवाह किया था। समुद्रगुप्त के अश्वमेघ प्रकार के सिक्कों से उसके अश्वमेघ यज्ञ की सूचना तथा चंद्रगुप्त द्वितीय के व्याघ्र हनन प्रकार के सिक्कों से उसकी पश्चिमी भारत के विजय की सूचना मिलती है। मध्य प्रदेश के एरण तथा भीलसा से रामगुप्त के कुछ सिक्के मिलते हैं जिनसे हम उसकी ऐतिहासिकता का पुनर्निर्माण करने में सहायता प्राप्त कर सकते हैं। कभी कभी सिक्कों के अध्ययन से हमें उनके काल की राजनैतिक तथा आर्थिक दशा का भी ज्ञान होता है। जैसे कुमारगुप्त के उत्तराधिकारियों के सिक्कों से पत्तनोमुख आर्थिक दशा का आभास मिलता है। इनमें मिलावट की मात्रा अधिक है। तीसरा है स्मारक। गुप्त काल के अनेक मंदिर, स्तंभ, मूर्तियां एवं चैत्य गृह प्राप्त हुए हैं जिनसे तत्कालीन कला तथा स्थापत्य की उत्कृष्टता सूचित होती है। इनसे तत्कालीन सम्राटों एवं जनता के धार्मिक विश्वास को समझने में भी मदद मिलती है। मंदिरों में भूमरा का शिव मंदिर, तिगवा का विष्णु मंदिर, नचना कुठार अर्थात मध्य प्रदेश के भूतपूर्व अजयगढ़ रियासत में वर्तमान का पार्वती मंदिर, देवगढ़ का दशावतार मंदिर, भीतरगांव का मंदिर तथा लाड़खान के मंदिर विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। ये सभी मंदिर अपने निर्माण शैली, आकार प्रकार एवं सुदृढ़ता के लिए प्रसिद्ध हैं तथा वास्तुकला के भव्य नमूने हैं। मंदिरों के अतिरिक्त सारनाथ, मथुरा, सुल्तानगंज, करमदंडा, खोह, देवगढ़ आदि स्थानों से बुद्ध, शिव, विष्णु आदि देवताओं की मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। इनसे तत्कालीन तक्षण कला का परप्रकाश पड़ता है। साथ ही इन मूर्तियों में गुप्त नरेशों की धार्मिक सहिष्णुता भी सूचित होती है। मंदिर तथा मूर्तियों के साथ ही साथ बाघ तथा अजंता की कुछ गुफाओं के चित्र भी गुप्त काल में ही माने जाते हैं, गुप्त काल के ही माने जाते हैं। बाघ की गुफाओं के चित्र लौकिक जीवन से संबंधित हैं जबकि अजंता के चित्र का विषय धार्मिक है। इन चित्रों के माध्यम से गुप्तकालीन समाज की वेशभूषा, श्रृंगार प्रसाधन एवं धार्मिक विश्वास को समझने में सहायता मिलती है। साथ ही इनसे गुप्त युगीन चित्रकला के पर्याप्त विकसित होने का भी प्रमाण उपलब्ध हो जाता है। इस प्रकार साहित्य एवं पुरातत्व दोनों के माध्यम से हम गुप्तकालीन इतिहास का पुनर्निर्माण कर सकते हैं। अगला मुख्य शीर्षक होगा उत्पत्ति तथा मूल निवास स्थान। पहले हम बात करेंगे उत्पत्ति की। यद्यपि गुप्त नरेशों के अनेक अभिलेख तथा सिक्के मिले हैं तथापि उनमें किसी से भी न तो वर्ण अथवा जाति के विषय में कोई संकेत मिलता है और न ही साहित्यिक साक्ष्यों में हमें इस विषय में कोई ठोस सामग्री उपलब्ध होती है। फलस्वरूप गुप्तों की उत्पत्ति का प्रश्न प्राचीन भारतीय इतिहास का सर्वाधिक विवादग्रस्त प्रश्न रहा है। विद्वानों ने इस राजवंश को शूद्र से लेकर ब्राह्मण जाति तक सिद्ध करने का अलग अलग प्रयास किया है। यहाँ हम प्रत्येक मत की अलग समीक्षा करेंगे। पहला, शूद्र तथा निम्न उत्पत्ति का मत। गुप्तों को शूद्र अथवा निम्न जाति से संबंधित करने वाले विद्वानों में काशी प्रसाद जायसवाल का नाम सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। जायसवाल की यह धारणा है कि गुप्त नरेशों ने निम्न वर्ण से संबंध होने के कारण ही अपने अभिलेखों में अपनी जाति का उल्लेख नहीं किया है। अपने मत की पुष्टि के लिए उन्होंने कौमुदी महोत्सव नामक एक नाटक ग्रंथ का सहारा लिया है, जिसकी रचना संभवतः वज्जिका नामक के किसी कवयित्री ने किया था। इस नाटक में एक कथा मिलती है जिसका सारांश इस प्रकार है। मगध में सुंदर वर्मा नामक एक क्षत्रिय राजा शासन करता था। उसका कोई पुत्र नहीं था, अतः उसने चंडसेन नामक एक व्यक्ति को गोद लिया। चंडसेन राजाओं से कारस्कर कहा गया है। कुछ समय पश्चात सुंदर वर्मा को कल्याण वर्मा नामक एक अपना पुत्र उत्पन्न हुआ। कल्याण वर्मा के जन्म से चंडसेन को बड़ी निराशा हुई। उसने मगध के वैरी मल्लेच्छ लिच्छवियों के साथ संबंध स्थापित कर अवसर पाकर कुसुमपुर अर्थात पाटलिपुत्र को घेर लिया। युद्ध में सुंदर वर्मा मार डाला गया तथा चंडसेन मगध का राजा बन बैठा। पाटलिपुत्र में कल्याण वर्मा के जीवन को असुरक्षित देखकर उसके पिता के योग्य तथा अनुभवी मंत्रियों ने उसे पंपासर नामक स्थान में पहुंचा दिया। इसके बाद उन्होंने चंडसेन के विरुद्ध विद्रोह भड़काया। सीमांत प्रदेशों में विद्रोह उठ खड़े हुए, जिनको दबाने के प्रयास में चंडसेन अपने बंधुओं सहित मार डाला गया। उसकी मृत्यु के साथ ही उसका वंश समाप्त हुआ। तत्पश्चात कल्याण वर्मा मगध का राजा हुआ। जायसवाल ने कौमुदी महोत्सव नाटक में चंडसेन की क्षमता गुप्त वंश के तीसरे सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम के साथ स्थापित की है। चंद्रगुप्त प्रथम का भी लिच्छवियों के साथ वैवाहिक संबंध था तथा कौमुदी महोत्सव के अनुसार चंडसेन ने भी लिच्छवी कुल में अपना संबंध स्थापित किया था। कौमुदी महोत्सव में लिच्छवियों को मल्लेच्छ कहा गया है, अतः चंद्रगुप्त प्रथम भी मल्लेच्छ अथवा निम्न जाति रहा होगा। इस ग्रंथ में चंडसेन कारस्कर कहा गया है। बोधायन ने इसका अर्थ निम्न जाति बताया है, अतः इस आधार पर भी चंडसेन अर्थात चंद्रगुप्त शूद्र प्रमाणित होता है। जायसवाल महोदय ने अपने मत का समर्थन कुछ अन्य प्रमाणों से भी किया है, जो इस प्रकार है। चंद्रगोमिन के व्याकरण की एक सूत्र वृत्ति में अजयत जरटो हुनान अर्थात जर्ट लोगों ने हुनों को जीता था लेख मिलता है। यहाँ स्कंद गुप्त की हुन विजय की ओर संकेत किया है। इस ग्रंथ में भी गुप्तों को जर्ट अथवा जाट कहा गया है। अतः कौमुदी महोत्सव नाटक तथा चंद्रगोमिन के व्याकरण, इन दोनों के सम्मिलित साक्ष्य से गुप्त लोग कारस्कर जर्ट सिद्ध होते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि वे आधुनिक कक्कड़ जाट के कोई पूर्वज रहे होंगे। दूसरा, प्रभावती गुप्ता जो चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी ने अपने पुनः ताम्रपत्र में अपने को धारण गोत्र का बताया है। यह गोत्र उनके पिता का था क्योंकि उसका पति वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय विष्णु वृद्धि गोत्र का ब्राह्मण था। जायसवाल महोदय ने इस धारण गोत्र का समीकरण जाटों की धरणी शाखा से किया है। इससे भी यही निष्कर्ष निकलता है कि गुप्त वंशी नरेश उच्च वर्ण के नहीं थे। इसी संदर्भ में उन्होंने मत्स्य पुराण का यह कथन भी उद्धृत किया है, जिसमें महानंदी के बाद शूद्र योनि के राजा पृथ्वी पर शासन करेंगे, ऐसा उल्लेख मिलता है। इस कथन से भी गुप्तों की निम्न उत्पत्ति संकेतित होती है। इन सभी प्रमाणों के आधार पर जायसवाल महोदय गुप्तों को शूद्र अथवा निम्न जातीय प्रमाणित करने की चेष्टा करते हैं। इसकी समीक्षा। काशी प्रसाद जायसवाल के उपयुक्त तर्क यद्यपि देखने में सबल प्रतीत होते हैं, परंतु यदि सावधानी पूर्वक उनकी समीक्षा की जाए तो ऐसा प्रतीत होगा कि उनमें कोई विशेष बल नहीं है। कौमुदी महोत्सव नाटक में जिस चंडसेन का उल्लेख हुआ है उसकी पहचान गुप्त वंशी चंद्रगुप्त प्रथम से नहीं की जा सकती। नाटक के अनुसार युद्ध में चंडसेन अपने बंधु बांधवों के साथ मार डाला गया। दूसरे शब्दों में उसकी मृत्यु के साथ ही उसका वंश भी समाप्त हो गया। चंद्रगुप्त प्रथम के साथ ऐसी कोई दुर्घटना नहीं हुई। हमें यह निश्चित रूप से पता है कि उसकी मृत्यु के पश्चात शताब्दियों तक उसका वंश चलता रहा। यदि हम चंडसेन तथा चंद्रगुप्त दोनों को एक ही व्यक्ति मान लें, ऐसी स्थिति में हमें गुप्तों का इतिहास चंद्रगुप्त प्रथम के साथ ही समाप्त कर देना होगा, जो सर्वथा अस्वाभाविक घटना होगी। अतः चंडसेन गुप्त वंशी चंद्रगुप्त नहीं हो सकता। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के J.S. नेगी की धारणा है कि कौमुदी महोत्सव में प्रयुक्त निहतः शब्द से चंडसेन का मारा जाना सूचित नहीं होता। रामायण से उदाहरण देते हुए उन्होंने स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि संस्कृत की हन धातु का प्रयोग कभी कभी विभक्ति अथवा अपमान को सूचित करने के लिए किया जाता है। अतः यहाँ चंडसेन को अपमानित होने अथवा क्षणिक हानि उठाने से तात्पर्य है, किंतु इस प्रकार के विचार से सहमत होना कठिन है, क्योंकि नाटक में चंडसेन के प्रसंग में यह भी कहा गया है कि उसका कुल उन्मूलित कर दिया गया। इस शब्द से उसके विनाश की सूचना मिलती है, न कि केवल अपमानित किए जाने की। अधिकांश विद्वान कौमुदी महोत्सव की ऐतिहासिकता में संदेह करते हैं। क्षेत्रेश चंद्र चट्टोपाध्याय ने इस ग्रंथ की प्रस्तावना में उल्लिखित कृतिवाशेष शब्द की ओर विद्वानों का ध्यान आकृष्ट किया है। इस शब्द का शाब्दिक अर्थ तो संकर से है, परंतु इसका लाक्षणिक अर्थ शंकराचार्य भी होता है, क्योंकि इसमें कृतिवाशेष को द्वैत की गांठ का भेदन करने वाला कहा जाता है। स्पष्ट है कि इससे तात्पर्य अद्वैतवाद के प्रणेता शंकराचार्य से ही है, जिसका समय 781 से 820 ईस्वी माना जाता है। इस ग्रंथ में शंकराचार्य का उल्लेख होना यह सिद्ध करता है कि यह बहुत बाद की रचना है, अतः गुप्त इतिहास के पुनर्निर्माण में इसे सहायक नहीं माना जा सकता। इस प्रकार कौमुदी महोत्सव के आधार पर गुप्तों की जाति के विषय में कोई निष्कर्ष निकालना तर्कसंगत नहीं लगता। दूसरा है वैश्य होने पर मत। एलन इसके आयंगर, अनंत सदाशिव अल्टेकर, रोमिला थापर, रामशरण शर्मा जैसे कुछ विद्वान गुप्तों को वैश्य मानते थे। अपने मत के समर्थन में अल्टेकर महोदय ने विष्णु पुराण के एक श्लोक का सहारा लिया है, जिसके अनुसार ब्राह्मण अपने नाम के अंत में शर्मा शब्द, क्षत्रिय वर्मा शब्द, वैश्य गुप्त शब्द तथा शूद्र दास शब्द लिखेंगे। गुप्त राजाओं के नामांत में गुप्त शब्द जुड़ जाना देखकर अल्टेकर उन्हें वैश्य जाति से संबंधित करते हैं। उनके मतानुसार गुप्त युग तक आते आते वर्णों के अनुसार व्यवसाय चयन का सिद्धांत शिथिल पड़ गया था। ब्राह्मण क्षत्रियों का कार्य करने लगे थे, जैसे वाकाटक और कदम्ब वंशों के लोग ब्राह्मण होते हुए भी शासन कार्य करते थे। गुप्तकालीन रचना शूद्रकृत मृच्छकटिक में चारुदत्त नामक एक ब्राह्मण को सार्थवाह अर्थात व्यापारी कहा गया है। अतः गुप्त लोग यदि वैश्य होते हुए भी शासन करते थे तो इस विषय में हमें कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। इसकी समीक्षा। अल्टेकर का उपयुक्त मत कई दृष्टियों से विचारणीय है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि गुप्त वंश के दूसरे सम्राट घटोत्कच के नाम के अंत में गुप्त शब्द नहीं जुड़ता। अभिलेखों में उसे केवल महाराजा घटोत्कच ही कहा गया है। वास्तविकता यह है कि गुप्त नाम इस वंश के संस्थापक का था और सर्वप्रथम चंद्रगुप्त प्रथम ने इसे अपने नाम के अंत में प्रयुक्त किया था। कालांतर में सभी राजाओं ने इसका अनुकरण किया। पुनश्च गुप्त शब्द धारण करना केवल वैश्य वर्ण के लोगों का ही अधिकार नहीं था। प्राचीन भारतीय साहित्य में हमें अनेक नाम ऐसे मिलते हैं जो यद्यपि वैश्य नहीं थे तथापि उन्होंने गुप्त शब्द अपने नामांत में धारण किया था। उदाहरण के लिए कौटिल्य, जो एक रूढ़िवादी ब्राह्मण था, का नाम विष्णुगुप्त भी था। इसी प्रकार कुछ अन्य नाम भी प्राचीन साहित्य तथा लेखों में खोजे जा सकते हैं। अतः केवल गुप्त शब्द के ही आधार पर गुप्त राजवंश को वैश्य वर्णांगत करना समीचीन नहीं होगा। छत्री होने का मत, सुधाकर चट्टोपाध्याय, रमेश चंद्र मजूमदार, गौरीशंकर हरिचंद्र ओझा आदि कुछ विद्वानों गुप्तों को छत्री जाति से संबंधित करते हैं। इनके तर्कों का सारांश इस प्रकार है। पंचोब बिहार के दरभंगा जिले में स्थित से राज्य का से प्राप्त एक लेख में किसी गुप्त वंश का उल्लेख हुआ है। इस गुप्त वंश के लोग अपने को पांडव अर्जुन का वंशज मानते थे तथा शैव मतानुयायी थे। इस गुप्त वंश की पहचान सम्राट गुप्त वंश से की गई है तथा पांडव अर्जुन के आधार पर उन्हें क्षत्रिय माना गया है। दूसरा, जावा से प्राप्त तंत्री कामंदक नामक ग्रंथ में महाराजा ऐश्वर्यपाल का उल्लेख मिलता है। वह अपने को इक्ष्वाकुवंशी छत्री कहता है तथा समुद्रगुप्त का वंशज बताता है। अतः गुप्त लोग सूर्यवंशी छत्री रहे होंगे। तीसरा, सीरपुर के लेख में चंद्रगुप्त नामक राजा को चंद्रवंशी छत्री कहा गया है। इस चंद्रगुप्त की पहचान गुप्तवंशी चंद्रगुप्त प्रथम से की जाती है और गुप्तों को भी चंद्रवंशी छत्री माना गया है। चौथा, गुप्तों का लिच्छवियों के साथ वैवाहिक संबंध, लिच्छवियों को छत्री माना गया है अतः गुप्त लोग भी छत्री रहे होंगे। समीक्षा, परंतु ये सभी तर्क निर्बल हैं। इनकी समीक्षा हम इस प्रकार कर सकते हैं। पंचोब के लेख में जिस गुप्त का उल्लेख हुआ है वह गुप्त राजवंश नहीं प्रतीत होता। यदि इस वंश के लोग गुप्त राजवंश से संबंधित होते तो इस अभिलेख में समुद्रगुप्त तथा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जैसे प्रतापी राजाओं का उल्लेख अवश्य करते। उनका वंशज बताने में वे गर्व का अनुभव करते। दूसरा, तंत्री कामंदक एक मध्यकालीन रचना है जिसे गुप्त इतिहास के पुनर्निर्माण में सहायक नहीं माना जा सकता। तीसरा, सीरपुर अभिलेख का चंद्रगुप्त गुप्तवंशी नहीं प्रतीत होता क्योंकि दोनों ही वंश परंपराएं अलग अलग हैं। चौथा, सभी विद्वान इस मत के नहीं हैं कि लिच्छवी क्षत्रिय थे। पाली ग्रंथों में उन्हें खतीय कहा गया है जो राजसत्ता का सूचक है। मनु ने उन्हें ब्रात्य अर्थात धर्मच्युत कहा है जो सावित्री के अधिकार से वंचित एवं संस्कारों से विहीन होते थे। ऐसा लगता है कि उनकी राजनैतिक प्रभुता के कारण ही उन्हें क्षत्रिय स्वीकार कर लिया गया था। पुनश्च यदि लिच्छवी क्षत्रिय रहे भी हों तो भी हम गुप्तों को उनके साथ वैवाहिक संबंधाधार पर क्षत्रिय नहीं मान सकते क्योंकि प्राचीन भारत में अनुलोम विवाह शास्त्र संगत था जिसके अनुसार कन्या अपने से उच्च वर्ण में ब्याही जाती थी। अतः इन तर्कों के आलोक में गुप्तों को क्षत्रिय मानने का मत ज्यादा सबल नहीं प्रतीत होता है। ब्राह्मण होने पर मत, गुप्तों की उत्पत्ति के विषय में जितने भी मत दिए गए हैं उनमें उनको ब्राह्मण जाति से संबंधित करने का मत कुछ तर्कसंगत प्रतीत होता है। यहाँ उल्लेखनीय है कि गुप्तवंशी लोग धारण गोत्र के थे। इसका उल्लेख चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती गुप्ता ने अपने पूना ताम्र पत्र में किया है। यह गोत्र उसके पिता का ही था क्योंकि उसका पति वाकटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय विष्णुवृद्धि गोत्र का ब्राह्मण था। यह गोत्र ब्राह्मणों का था। हेमचंद्र राय चौधरी धारण का तदात्मय शुंग शासक अग्निमित्र की प्रधान महिषी धारणी जिसका उल्लेख कालिदास के मालविकाग्निमित्र में मिलता है से स्थापित करते हुए यह प्रतिपादन करते हैं कि गुप्त लोग उसी के वंशज थे किंतु इस प्रकार के निष्कर्ष के लिए कोई प्रमाण नहीं है। स्कंद पुराण में ब्राह्मणों के 24 गोत्र गिनाए गए हैं जिनमें 12वां गोत्र धारण है। इस ग्रंथ में धारण गोत्रीय ब्राह्मणों की जिन चारित्रिक विशेषताओं का उल्लेख हुआ है वे सभी गुप्त सम्राटों के व्यवहार एवं चरित्र में देखी जा सकती है। दशरथ शर्मा जैसे कुछ विद्वान यह मत रखते हैं कि प्राचीन भारत के लोग अपने पुरोहित का गोत्र भी धारण कर लेते थे। अतः संभव है प्रभावती गुप्ता का धारण गोत्र उनके पिता का न होकर किसी पुरोहित का हो। किंतु जैसा कि मनुस्मृति के टीकाकार मेधातिथि ने स्पष्ट किया है केवल क्षत्रिय तथा वैश्य वर्ण के लोग ही अपने पुरोहित का गोत्र धारण करते थे न कि ब्राह्मण। प्रभावती गुप्ता चूंकि ब्राह्मण वर्ण की थी अतः उसके द्वारा अपने पुरोहित के गोत्र को धारण किए जाने का प्रश्न नहीं उठता। कदंब वंशी राजा काकुत वर्मा के तालगुंड अर्थात मैसूर अभिलेख से पता चलता है कि उसने अपनी एक पुत्री का विवाह गुप्त कुल में किया था। कदंब वंशी लोग मानव्य गोत्री ब्राह्मण थे तथा उन्होंने अपने को हारित का वंशज बताया है। इस वंश के संस्थापक मयूर शर्मा को कौटिल्य की प्रकृति का रूढ़िवादी ब्राह्मण कहा गया है। कदंब नरेश धर्म महाराज एवं धर्म महाधिराज की उपाधि धारण करते थे। इस कुल की कन्याओं का विवाह वाकाटक तथा गंग जैसे ब्राह्मण कुलों में संपन्न हुआ था। हमें कोई भी प्रमाण ऐसा नहीं मिलता जिसके आधार पर यह कहा जा सके कि कदंब कुल की कोई कन्या किसी ब्राह्मणेतर कुल में विवाही गई थी। यह कहा जा सकता है कि यदि गुप्त लोग ब्राह्मण नहीं होते तो यह वैवाहिक संबंध प्रतिलोम विवाह की कोटि में आता जिसमें कन्या अपने से निम्न वर्ण में दी जाती है। इस प्रकार का विवाह स्मृति ग्रंथों में अति निंदनीय कहा गया है। गुप्त काल में प्रतिलोम विवाहों के उदाहरण बहुत कम प्राप्त होते हैं। कदंब वंशी लोग जो उच्च कुल के ब्राह्मण द्विजोत्तम थे अपने व्यवहार द्वारा शास्त्रोल्लंघन नहीं कर सकते थे। संदेह किया जा सकता है कि गुप्तों की शक्ति के डर कर अथवा उनकी समृद्धि से प्रभावित होकर कदंबों ने शास्त्रोल्लंघन किया होगा, किंतु हम जानते हैं कि समुद्रगुप्त के अतिरिक्त किसी भी गुप्त वंशी शासक ने सुदूर दक्षिण में अभियान नहीं किया, अतः कदंबों द्वारा उनकी शक्ति से भयभीत होने का प्रश्न नहीं उठता। उनकी रूढ़िवादिता तथा धार्मिक कट्टरता को देखते हुए यह नहीं कहा जा सकता कि उन्होंने समृद्धि के आगे धर्म का परित्याग किया होगा। पुनश्च गुप्त वंश की कन्याओं का विवाह भी ब्राह्मण कुलों में ही हुआ था। प्रभावती गुप्ता वाकाटक कुल में ब्याही गई थी। 6ठी शताब्दी के बौद्ध लेखक परमार्थ ने बताया है कि बालादित्य ने अपनी बहन का विवाह वशुराट नामक ब्राह्मण से किया था। अतः गुप्तों को ब्राह्मण मानना ही अधिक समीचीन लगता है। ऐसा प्रतीत होता है कि उनकी अतिशय उदारता एवं धर्म सहिष्णुता की नीति के कारण ही गुप्त राजाओं ने अपने अभिलेखों में अपने वर्ण का उल्लेख करना आवश्यक नहीं समझा है। इस प्रकार इन विभिन्न मतों की समीक्षा करने के पश्चात हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि गुप्तों की जाति का प्रश्न हमारे ज्ञान की वर्तमान अवस्था में असंदिग्ध रूप से हल नहीं किया जा सकता। हमें संभावित रूप से उन्हें क्षत्रिय अथवा ब्राह्मण वर्णों में से किसी एक के साथ संबद्ध करना चाहिए। बहुत संभव है वे ब्राह्मण ही रहे होंगे। अगला मुख्य शीर्षक है मूल निवास स्थान। उत्पत्ति के ही समान गुप्तों के मूल निवास स्थान का प्रश्न भी बहुत कुछ अंशों में अनुमान परक ही है। इस संबंध में कुछ प्रमुख मत इस प्रकार है। पहला है बंगाल। एलन गांगुली तथा रमेश चंद्र मजुमदार जैसे विद्वान गुप्तों का मूल निवास स्थान बंगाल में निर्धारित करते हैं। इस मत का मुख्य आधार चीनी यात्री इत्सिंग का यात्रा विवरण है। यह लिखता है कि उसके 500 वर्षों पूर्व हुई लून नामक एक चीनी यात्री नालंदा आया था। यहाँ चिलिकितो नामक राजा ने चीनी भिक्षुओं के लिए मंदिर बनवाया था तथा उसके निर्वाह के लिए 24 गांवों की आमदनी दान में दिया था। वह चीन का मंदिर कहा जाता था तथा मिली किया सिकिया नोपो अर्थात मृग शिखावन नामक मठ के पास स्थित था, जिसकी दूरी नालंदा से 40 योजन पूर्व की ओर गंगा नदी के किनारे पड़ती थी। इन विद्वानों ने श्रीगुप्त को गुप्त वंश का संस्थापक माना है। गांगुली का विचार है कि इत्सिंग के आधार पर यदि नालंदा से पूर्व की ओर गंगा नदी के किनारे की 40 योजन अर्थात 240 मील वाली दूरी नापी जाए तो यह स्थान आधुनिक पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में पड़ेगा। यहाँ गुप्त वंश के संस्थापक का मूल निवास था। मजुमदार के अनुसार हमें इसे एक संभावित परिकल्पना के रूप में मान लेना चाहिए। परंतु इस मत के विरुद्ध दो बातें कही जा सकती हैं। पहला, गुप्त वंश के संस्थापक का नाम महाराज गुप्त था, जबकि चिलिकितो का भारतीय रूपांतर श्रीगुप्त होता है। दूसरा, चिलिकितो अर्थात श्रीगुप्त का समय इत्सिंग के अनुसार उसके 500 वर्षों पूर्व था। इत्सिंग 671 ईस्वी में भारत आया था, अतः उसने जिस शासक की चर्चा की है उसका समय 171 ईस्वी हुआ। गुप्त वंश के संस्थापक का काल 275 ईस्वी के पूर्व नहीं हो सकता, अतः श्री गुप्त तथा महाराज गुप्त दोनों भिन्न भिन्न व्यक्ति प्रतीत होते हैं। इस प्रकार हम गुप्तों का आदि राज्य बंगाल को नहीं मान सकते। इस प्रसंग में एक अन्य विचारणीय बात यह है कि चिलिकितो द्वारा 24 गांवों की आय दान में दिया जाना यह सिद्ध करता है कि वह एक शक्तिशाली तथा समृद्ध शासक था, किंतु यह स्थिति श्री गुप्त की स्थिति से मेल नहीं खाती, जो एकमात्र साधारण तथा संभवतः अधीनस्थ राजा था। जेएस नेगी के अनुसार यह गुप्त वंश का कोई महान सम्राट, जिसका अर्थ है गुप्त वंश का प्रसिद्ध शासक, अतः गुप्तों के मूल स्थान के निर्धारण में इत्सिंग के विवरण को आधार नहीं बनाया जा सकता। दूसरा मूल निवास स्थान माना गया है मगध। पुराणों पर दृष्टिपात करने से ज्ञात होता है कि गुप्तों का आदि संबंध मगध से था। विंटर नित्ज का विचार है कि विष्णु पुराण गुप्तकालीन रचना है, अतः इसे गुप्तों के इतिहास के संबंध में प्रमाणिक माना जा सकता है। विष्णु पुराण की कुछ पांडुलिपियों में अनुगंगा प्रयागम मगधा गुप्ताश्च भोष्यंती अर्थात प्रयाग तथा गंगा के किनारे के प्रदेश पर मगध के गुप्त लोग शासन करेंगे उल्लेखित मिलता है। ढाका से प्राप्त इस पुराण की 3 पांडुलिपियों में अनुगंग प्रयागम च मगधा गुप्ताश्च मगधान भोष्यंती उल्लेख है। दोनों पाठों का अंतर इस प्रकार है, प्रथम पाठ में अनुगंगा तथा द्वितीय पाठ में अनुगंग मिलता है। द्वितीय पाठ में गुप्ताश्च तथा भोष्यंती के बीच में मगधान शब्द निरर्थक जुड़ा हुआ है, क्योंकि गुप्ताश्च का विशेषण मगधा है, अतः प्रथम पाठ अधिक शुद्ध लगता है। उपर्युक्त दोनों ही पाठों में मगधा शब्द गुप्ताश्च के विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है। इससे स्पष्ट है कि या तो मगध गुप्तों का मूल निवास था या यह उनके राज्य में सम्मिलित था। वायु पुराण में किसी गुप्त शासक की साम्राज्य सीमा का वर्णन करते हुए बताया गया है कि गंगा नदी के किनारे प्रयाग तथा साकेत और मगध के प्रदेशों का गुप्त वंश के लोग उपभोग करेंगे। राय चौधरी का विचार है कि प्रयाग तथा कौशल के प्रदेश गुप्त वंश के तीसरे शासक महाराजाधिराज चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा जीतकर गुप्त राज्य में मिलाए गए थे। उत्तरी बिहार को चंद्रगुप्त में ने लिच्छवियों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करके प्राप्त किया था। इस प्रकार ऐसा निष्कर्ष निकलता है कि गुप्तों का आदि राज्य मगध में ही था। मगध के साथ उनके मूल संबंध को ध्यान में रखकर ही पुराण उन्हें मगध गुप्त कहते हैं। अगला मूल निवास स्थान है पूर्वी उत्तर प्रदेश। एस आर गोयल ने गुप्तों की मूल भूमि का प्रश्न पुरातात्विक आधार पर हल करने का प्रयास किया है। उनके अनुसार किसी भी वंश के प्रारंभिक लेख तथा सिक्के प्रायः उसी स्थान से प्राप्त होते हैं जो उनका आदि निवास होता है। बख्तरी यवन शासकों के सिक्के वैक्टोरिया से मिलते हैं। कनिष्क के अधिकांश लेख उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र तथा वाकाटकों के लेख भी उनके आदि स्थान से ही मिलते हैं। चूंकि गुप्त वंश के प्रारंभिक लेख तथा सिक्के पूर्वी उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुए हैं, अतः उनका मूल निवास स्थान इसी क्षेत्र में कहीं रहा होगा। इस प्रसंग में उल्लेखनीय है कि गुप्तों के प्राचीनतम स्वर्ण सिक्के चंद्रगुप्त कुमार देवी प्रकार हैं। इनमें से अधिकांश पूर्वी उत्तर से ही मिले हैं। प्रारंभिक गुप्त लेखों में 8 इसी क्षेत्र में से मिलते हैं। गुप्तों का सबसे महत्वपूर्ण लेख प्रयाग से मिला है, जो समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का विवरण देता है। इस प्रकार का लेख शासक की स्थान के प्रति अभिरुचि का सूचक है। इस कोटि का दूसरा लेख यशोद वर्मन का मंदसौर लेख है, जो उसी स्थान से मिलता है जो उसकी शक्ति का केंद्र था। गुप्तों का सबसे महत्वपूर्ण लेख प्रयाग से मिला है, जो समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का विवरण देता है। इस प्रकार का लेख शासक की स्थान के प्रति अभिरुचि का सूचक है। इस कोटि का दूसरा लेख यशोद वर्मन का मंदसौर लेख है, जो उसी स्थान से मिलता है जो उसकी शक्ति का केंद्र था। पूर्वी उत्तर प्रदेश से गुप्तों के जो लेख मिले हैं वे न केवल संख्या में अधिक हैं, अपितु वे अन्य स्थानों के लेखों से प्राचीनतर भी हैं। इससे गुप्तों का आदि संबंध इस भाग से बंगाल अथवा मगध की अपेक्षा कहीं अधिक अच्छे ढंग से सिद्ध किया जा सकता है। प्रयाग प्रशस्ति के आधार पर यह कहा जा सकता है कि गुप्तों का मूल निवास स्थान इसी भाग में रहा होगा, किंतु इस मत के विरुद्ध यह कहा जा सकता है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश से गुप्तों के लेख सबसे पहले चंद्रगुप्त द्वितीय तथा कुमारगुप्त प्रथम के समय से ही मिलते हैं। प्रारंभिक काल का कोई लेख इस भाग से प्राप्त नहीं होता। समुद्रगुप्त, रामगुप्त तथा चंद्रगुप्त द्वितीय के समय के अधिकांश लेख पूर्वी मालवा क्षेत्र से मिले हैं। यहाँ तक प्रयाग प्रशस्ति का प्रश्न है, यह एक अशोक स्तंभ है जो मूलतः कौशाम्बी में गढ़वाया गया था और कालांतर में इसी के ऊपर समुद्रगुप्त ने अपना लेख अंकित करवा दिया। अतः इसके आधार पर गुप्तों के मूल स्थान की समस्या हल नहीं की जा सकती। इस प्रकार उत्पत्ति के ही समान गुप्तों के मूल निवास स्थान पर भी प्रश्न भी स्पष्ट प्रमाणों के अभाव में विवाद का विषय बना हुआ है। गुप्त राजवंश, प्रारंभिक इतिहास। गुप्त राजवंश की स्थापना 275 ईस्वी में महाराज गुप्त द्वारा की गई थी। हमें यह निश्चित रूप से पता नहीं चलता है कि उसका नाम श्री गुप्त था अथवा केवल गुप्त। उसका कोई भी लेख अथवा सिक्का नहीं मिलता। दो मुहरें जिनमें से एक के ऊपर संस्कृत तथा प्राकृतिक मिश्रित मुद्रालेख गुप्तस्य तथा दूसरे के ऊपर संस्कृत में श्री गुप्तस्य अंकित है उससे संबंधित की जाती है, परंतु इस संबंध में हम निश्चित रूप से कुछ भी नहीं कह सकते हैं।